यशया अध्याय 6। यशया की पुस्तक अध्याय 6 में यशया उल्लेख करता है कि परमेश्वर ने उसे सेवकाई में नियुक्त किया था। अध्याय 1 में यशया ने अपने कार्यकाल का उल्लेख किया था कि उसने उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिया नाम यहूदा के राजाओं के समय भविष्यवाणियां की थी, और ये भी कहा जाता है कि हिजकिया के दुष्ट पुत्र मनश्शे ने उसे आरे से कटवा दिया था। यशया की बुलाहट का उल्लेख अध्याय 6 में किया गया है। यशया अध्याय 6 पद 1। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। उज्जियाह अत्यधिक लोकप्रिय राजा था। उसने इसराइल पर 52 वर्ष राज्य किया था। जब वो 16 वर्ष की आयु का था, उसने राजकाज संभाल लिया था। उसके राज्यकाल में यहूदा के सैनिक अभियान बहुत सफल रहे और देश समृद्ध हुआ। उसने जल व्यवस्था बहुत अच्छी विकसित की थी और कृषि क्षेत्र का विस्तार किया था। इसराइल की सीमा बढ़ाकर पलिस्ती सीमा में प्रवेश कर गई थी। ये एक ऐसी सफलता थी जो उज्जियाह से पहले के राजा प्राप्त नहीं कर पाए थे। उसने गात और अशदोद, दो पलिस्ती नगरों की शहरपना गिराकर उन्हें अपने अधीन कर लिया था। उसने पलिस्ती सीमा में आवास बना दिए थे। उसकी सेना में 310,000 सैनिक थे। उसने युद्ध विशेषज्ञों की सहायता से नए नए शस्त्रों का निर्माण किया था। उसके पास बड़े बड़े पत्थर फेंकने की तोपें थी। उसके पास तीर चलाने के साधन भी थे। उसने यहूदा को बलशाली बनाया था, और उसके राज्य काल में जनता अपने आप को सुरक्षित समझती थी। इस कारण वो बहुत लोकप्रिय था। उसका नाम दूर दूर तक जाना जाता था। मिस्र में भी उसका नाम था। वो हर जगह चर्चा का विषय था। सबके होठों पर उसी का नाम था। इतिहास की पुस्तक में लिखा है, दूसरा इतिहास 26 अध्याय 5 पद, वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर उसको भाग्यवान किए रहा। वो एक ऐसा व्यक्ति था, उस पर लोगों को विश्वास था, क्योंकि उसने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की थी। उसकी जनता उस पर विश्वास रखकर उस पर निर्भर थी, और वो स्वाभाविक ही होता है। अंत में हुआ ये कि प्रजा ने परमेश्वर के स्थान पर उसमें विश्वास रखना आरंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में ये आवश्यक हो जाता है कि परमेश्वर उस व्यक्ति को हटा दे, जिससे कि मनुष्य फिर से परमेश्वर से आस लगाए। उज्जियाह के साथ भी ऐसा ही हुआ। यही एक महत्वपूर्ण कारण था कि यशया ने कहा, जिस वर्ष राजा उज्जियाह मरा, मैंने यहोवा को देखा। इससे पहले उसकी आंखें उज्जियाह पर लगी थी। उसका विश्वास उज्जियाह में था, क्योंकि वो सर्वमान्य और भला व्यक्ति था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। चारों ओर समृद्धि दिखाई देती थी। ऐसी स्थिति में मनुष्य दुर्भाग्य से परमेश्वर को भूल जाता है, और जब अकस्मात ही संकट आ पड़े, तब परमेश्वर याद आता है। उज्जियाह मर गया। अब क्या किया जाए? उसका पुत्र पिता की बराबरी नहीं कर पाएगा। वो अपने पिता के तुल्य योग्य नहीं था। उत्तरी राज्य इसराइल की राजनीतिक दशा अच्छी नहीं है। उसकी सत्ता की भी धज्जियां उड़ रही है। एक के बाद एक राजा की हत्या हो रही है। वे विनाश के कगार पर खड़े हैं। ऐसा न हो कि हमारा भी नाश हो जाए। हमारी राजगद्दी खाली पड़ी है। ऐसे समय में यशया को परमेश्वर का दर्शन प्राप्त हुआ और उसने देखा कि सिंहासन खाली नहीं है। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। परमेश्वर ने जैसे ही यशया के आदर्श पुत्र उज्जिया हटाया, वैसे यशया की आंखों में परमेश्वर दिखाई दिया। यशया ने देखा कि सिंहासन अभी खाली नहीं, सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान है। हमारे लिए ये जान लेना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान रहता है। वही हमारे जीवन और संपूर्ण जगत पर राज करता है। आज विश्व की दशा देखकर किसी भी समझदार व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में भययुत्र हो जाना स्वाभाविक ही होता है, परंतु यदि हम उसके पार देख पाएं, तो हमें बोध हो जाएगा कि वास्तविक शासक तो परमेश्वर है। तब मुझे शांति मिलती है, तब मैं शांतिपूर्वक सो सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। ये कितना आवश्यक है कि मैं जान लूं कि परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है, सिंहासन खाली नहीं है। यदि मुझ पर विपत्ति आती भी है, तो वो परमेश्वर की दृष्टि में है। ये धारणा हमारे मन मस्तिष्क का भाव बन जानी चाहिए। देखिए यशया उस दृश्य का वर्णन कैसे करता है। यशया अध्याय 6:2। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उनके 6-6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर के सिंहासन के पास करूब भी उपस्थित रहते हैं। सराप और करूबों में लगभग समानता है। ये स्वर्ग दूत है। एहेस्केल ने भी एहेस्केल की पुस्तक अध्याय 1-10 में परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर सराप और करूबों को देखा था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 में योहन्ना ने दर्शन में परमेश्वर के सिंहासन को देखा और ये भी देखा कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने बिल्लोर के कांच का सा सागर है। उसने इन स्वर्ग दूतों को भी देखा, परंतु हम नहीं जानते कि वे करूब थे या सराप। उनका एकमात्र काम है परमेश्वर की आराधना करना और उसकी आराधना में अगुवाई करना। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि वे पुकारते थे। प्रकाशित वाक्य 4:8। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। उनके 6 पंख होते हैं, 2 से वे अपने चेहरे को ढांपते हैं और 2 से वे अपने पांवों को और 2 से वे उड़ते हैं। उन्हें आप चिड़िया या कोई प्राणी ना समझे, क्योंकि वे बहुत बुद्धिमान प्राणी होते हैं। यशया अध्याय 6:3। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। वे परमेश्वर की महिमा और पवित्रता का गुणगान करते रहते हैं। यशया अध्याय 6:4। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नेवे डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। यशया भी ठीक वैसे ही स्वर्गिक दृश्य का वर्णन कर रहा है जैसे योहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के अध्याय 4-5 में किया है। एहेस्केल ने भी इसी दृश्य का वर्णन अध्याय 1-10 में किया है। परमेश्वर की वे संतान जो वास्तव में गंभीर है, उनके लिए मेरा परामर्श ये है कि वे इन अध्यायों को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझे, क्योंकि ये वर्णन जो उनमें किया गया है उसे आप शीघ्र ही देखने वाले हैं। आप जब स्वर्ग में जाएंगे तो अचंभे के कारण आपका मुंह खुला न रह जाए, नहीं तो स्वर्ग के लोग जान लेंगे कि आपको वचन की जानकारी नहीं है। अध्ययन करने के लिए ये अति रोचक भाग है, ताकि स्वर्ग जाने पर, स्वर्ग की तमाम घटनाओं को देखने पर, जब करूब कहेंगे, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो था और है और आने वाला है, तब आप कहेंगे, ठीक है, उन 24 प्राचीनों को देखो, वे अपने अपने मुकुट परमेश्वर के सिंहासन के सामने डालेंगे। इस प्रकार आपको वहां कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपको वहां का आराधना क्रम पता है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इन अध्यायों को पढ़ते रहो, जहां पर स्वर्ग के सिंहासन का उल्लेख है। यहां प्रत्येक वर्णन के साथ सृष्टिकर्ता परमेश्वर की महानता होती है। वो सिंहासन पर विराजमान है और जगत पर राज्य करता है। उसकी उपासना और उसका अंगीकार किया जाता है। यशया ने ये सब देखा। यशया अध्याय 6:5। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ। अब यशया अपने आप को एक नया प्रकाश में पाता है। अब तक तो वो इस संसार के धुंधले प्रकाश में था, जिसमें हम इतने बुरे दिखाई नहीं देते हैं, वरन बड़े अच्छे दिखते हैं। परंतु सावधान, सूर्य के प्रकाश में दर्पण ना देखें, कुछ भी छिपता नहीं। मेरे कहने का मतलब, सूर्य के प्रकाश में दर्पण में अपने आप को देखने की बात ही कुछ और है। परमेश्वर के प्रकाश में स्वयं को पाना एक भिन्न अवस्था होती है। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता जिसे परमेश्वर का सच्चा दर्शन प्राप्त हुआ हो और उसने यशया के शब्दों को दोहराया ना हो, हाय हाय, मैं नाश हुआ। जब पत्रस को ज्ञात हुआ कि उसकी नाव पर प्रभु है, तो उसने कहा, प्रभु मुझसे दूर हो, मैं कैसा पापी मनुष्य हूं। दानियल ने जब दर्शन देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। परमेश्वर को देखने से उसी ज्योति के द्वारा हम अपनी सही अवस्था को जान पाते हैं। उसको देखने के बाद कोई घमंड नहीं कर सकता। क्या आपने कभी किसी घमंडी व्यक्ति को देखा है जो आप जान ले कि उसने परमेश्वर को नहीं देखा है? यीशु मसीह की महान घोषणा मत्ती 5:6-7 में पाते हैं। उसने अपनी शिक्षाओं का आरंभ इस प्रकार किया है। मत्ती 5:3, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इन धन्यवादियों में प्रभु यीशु मसीह ने एक मसीही जन के 7 गुणों का चरित्र चित्रण किया है। सबसे महत्वपूर्ण है मन की दीनता। ये कहां से प्राप्त होती है? परमेश्वर को देखने से आती है। परमेश्वर का दर्शन ही संगति का आरंभ होता है। जब मैं परमेश्वर को देखता हूं, उसमें मैं अपने आप को देख पाता हूं। जैसे ही मैं अपने आप को देखता हूं, मैं अपने आप से कहता हूं, हाय, मेरे प्रति मैं कुछ भी नहीं हूं। ईश्वरीय दर्शन मेरे जीवन को परमेश्वर की संगति में लाता है, और परमेश्वर के दर्शन की ज्योति में मैं स्वयं को देख पाता हूं, कि स्वयं को समझूं कि मैं क्या हूं। हाय हाय, मैं कुछ भी नहीं। मन की दीनता। मत्ती 5:4, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। मेरे मन की दीनता मुझे शोक करने पर बाध्य करती है कि मैंने क्या किया है, मैं ये कैसे कर सकता था। ये प्रकाशन मुझे परमेश्वर की ज्योति से ही प्राप्त होता है, तब मैं कहता हाय मुझ पर। यशया अध्याय 6:5 में आगे लिखा है, मैं नाश हुआ, मैं दुष्ट हूं और दुष्टों में रहता हूं। यशया अध्याय 6:5 में आगे लिखा है, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। तब उसने देखा कि एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिससे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था। मिलाप के तंबू का अध्ययन बड़ा रोचक है, क्योंकि वो स्वर्ग और परमेश्वर के सिंहासन का नमूना है। यदि आप जानना चाहते हैं कि स्वर्ग कैसा है, तो ये उसका नमूना है। परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि वो निर्देश पालन में लेश मात्र भी चूक न करे, क्योंकि ये स्वर्ग का नक्शा है। यहां वेदी पर कोयले हैं, क्योंकि स्वर्ग में भी वेदी है और उसमें जलते हुए कोयले हैं। यशया अध्याय 6:6-7, तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया और उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। सराप ने वेदी पर से अंगारा चिमटे द्वारा उठाकर यशया के मुंह पर लगाया और कहा, तेरा अधर्म दूर हो गया, क्योंकि उसने कहा था कि वो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य था। उसका शुद्ध किया जाना परमेश्वर की ओर से था। यहां ध्यान दीजिए कि यशया को शुद्ध करने का काम परमेश्वर की ओर से था, न कि यशया का अपना प्रयास। यशया ने जो किया वो मात्र यही था कि उसने स्वीकार किया कि वो अशुद्ध था। परमेश्वर बस इतना ही चाहता है कि हम स्वीकार करें कि हम अशुद्ध हैं, पापी हैं। पहला योहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परंतु हमें अपने पाप स्वीकार करने चाहिए। हाय मुझ पर, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। कैसी अद्भुत बात है, ज्यों ही मैंने अपना पाप स्वीकार किया त्यों ही मुझे क्षमा प्राप्त होती है। दाऊद कहता है भजन संहिता 32:1, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। दाऊद पापों को स्वीकार करने से पूर्व क्या कह रहा है, भजन संहिता 32:3-5। तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी जुराहट बनती गई। तब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। परमेश्वर के अनुग्रह प्रेममय क्षमादान का तत्कालीन कार्य, वो तो आपको पापों से धोने और शुद्ध करने के लिए तत्पर है। देरी आप ही करते हैं कि अपने पापों को उसके सामने मानते नहीं। इसके पश्चात परमेश्वर छोड़ नहीं देता है, वो आपके जीवन में काम करना चाहता है। यदि आप उसे स्वतंत्रता दे तो वो आपके जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है। वो आपके जीवन के माध्यम से अन्यों को छूना चाहता है। परमेश्वर वहां पर रुकता नहीं। दुनिया आवश्यकताग्रस्त है, दुनिया अंधकार में है। आप अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के मध्य वास करते हैं। उन्हें ये जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर उन्हें शुद्ध करेगा। अतः परमेश्वर पहले तो आप में काम करेगा, फिर आपके द्वारा दूसरों में। जब मैंने परमेश्वर को देखा तब मैंने कहा, मेरे प्रति हाय। यशिया ने ये वादन करते हुए सुना, पवित्र पवित्र पवित्र। तब उसने कहा, मेरे प्रति हाय, मैं अपवित्र हूं। यशिया अध्याय 6:8। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। इस बार यशिया के शब्दों में भिन्नताएं हैं, क्योंकि उसे शुद्ध किया गया। ये वो व्यक्ति है जिसका जीवन परमेश्वर के अंगार से स्पर्श किया गया है। तब परमेश्वर ने कहा, मैं किसको भेजूं। यशिया अध्याय 6:8 के अंत में लिखा है, तब मैंने कहा, परमेश्वर मैं यहां हूं, मुझे भेज। जब परमेश्वर आपके जीवन को स्पर्श कर लेता है तब वो आपके जीवन को दूसरे लोगों के जीवन को छूने के लिए प्रयोग करना चाहता है। परमेश्वर का एक कार्य है जो वो करना चाहता है। इसके लिए समस्या यही है, उस कार्य के लिए कौन जाएगा और किसको भेजूं। प्रभु यीशु ने मत्ती 9:37 में क्या कहा था, पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, हमारी ओर से कौन जाएगा, हम किसे भेजे। वो परमेश्वर के लिए उपयोगी साधन बन जाता है। उसके मुंह से जवाब होता है, मैं यहां हूं प्रभु, मुझे भेज। तब भेजने की आज्ञा। यशिया अध्याय 6:9। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह। इस समय यहूदा पतन की स्थिति में था। उन्होंने जीवित परमेश्वर को त्याग कर मूर्ति पूजा आरंभ कर दी थी। उनमें आत्मिक सुधार तो आए थे, परंतु वे सब दिखावा था। वे सुधार दिल से नहीं थे। परमेश्वर उन्हें चेतावनी दिए बिना दंड देना नहीं चाहता था, परंतु वे चेतावनी पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तथापि परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता में चेतावनी देना चाहता था। परमेश्वर की ये बात मेरे लिए रोचक दिखाई पड़ रही है। यद्यपि मनुष्य प्रतिक्रिया नहीं करता, ना ही सुनता है, फिर भी परमेश्वर उसे अवसर प्रदान करता है। वो चेतावनी देने से रुकता नहीं है। परमेश्वर फिर भी कहता है, जा इन लोगों से कह। यशिया अध्याय 6:9 में आगे लिखा है, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बुझो। इसलिए परमेश्वर ने कहा, यशिया अध्याय 6:10, तू इन लोगों के मन को मोटे कर, उन्हें परमेश्वर का संदेश पहुंचा दे कि उनके पास कोई बहाना ना हो। यशिया अध्याय 6:10 में आगे लिखा है, उनके कानों को भारी कर, उनके कानों में परमेश्वर का संदेश भर दे। यशिया अध्याय 6:10-11, और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिरावे और चंगे हो जाए। तब मैंने पूछा, हे प्रभु कब तक। उसने कहा, जब तक नगर न उजड़े और उनमें कोई रह न जाए और घरों में कोई मनुष्य न रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए। परमेश्वर इन लोगों से बातें कर रहा था, निरंतर उन्हें चेतावनी दे रहा और निरंतर उन्हें अवसर प्रदान करता रहा, जब तक उस देश में आखिरी व्यक्ति जिंदा था। परमेश्वर निरंतर अपनी गवाही देते रहेगा। इस संसार में परमेश्वर निरंतर गवाही को देता रहेगा, आज भी दे रहा है, परंतु आज का ये संसार सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। लोग परमेश्वर की गवाही का मजाक उड़ा रहे हैं, फिर भी हमें गवाही देनी है। परमेश्वर गवाही के बगैर इस संसार को इस दशा में छोड़ नहीं सकता। मैंने किसी पत्रिका में एक व्यंग चित्र देखा जिसमें एक बच्चा स्कूल से घर आता है तो उसका स्थूलकाय पिता, जो बहुत भारी शरीर वाला था, अपने बेटे से मजाक में कहता है, परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप में और अपनी छवि में बनाया है, मैं स्वयं विकसित नहीं हुआ हूं। ये परमेश्वर का उपहास है, परंतु हमें सुसमाचार सुनाना है, प्रभु की गवाही देनी है, हमें संसार को चेतावनी देनी है। यद्यपि वे सुनते नहीं, वे देखते नहीं, उनके मन भारी है, उनकी आंखें अंधी है, जब तक एक भी जन शेष रहेगा, परमेश्वर अपना संदेश पहुंचाता रहेगा। जब तक सब कुछ नष्ट नहीं हो जाता, तब तक परमेश्वर चाहता है कि उन तक एक गवाही पहुंचे। आज संसार में प्रभु की गवाही का माध्यम कलीसिया है, परंतु कलीसियाई अंत शीघ्र ही होने वाला है और कलीसिया शीघ्र ही इस संसार से कूच कर जाएगी। इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर की गवाही का अंत हो जाएगा। परमेश्वर दो प्रभावशाली गवाह भेजेगा, वे यरूशलेम में जाएंगे। परमेश्वर 144,000 यहूदियों पर भी मोहर लगाएगा जो इस अंधकार भरे संसार में उसकी गवाही देंगे। तब परमेश्वर स्वर्ग दूतों को भेजेगा कि वे अंतरिक्ष में उड़कर सुसमाचार का प्रचार करेंगे और मनुष्य को चेतावनी देंगे कि वे क्रूर व्यक्ति के चिन्ह को स्वीकार ना करें। परमेश्वर आगे भी मनुष्यों के बाद स्वर्ग दूतों के द्वारा अपनी गवाही देता रहेगा और तब तक देता रहेगा जब तक कि ये पृथ्वी मानव रहित ना हो जाएगी। परमेश्वर मनुष्य तक अपनी गवाही पहुंचाने में विश्वास योग्य है। और प्रभु कब तक? जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। इसलिए परमेश्वर के गवाह उनके भविष्य वक्ता, जो लोगों को नबुकदनेस्सर की बंधुआई तक ले जाने तक चेतावनी दे रहे थे, परमेश्वर यरमिया के द्वारा अपना संदेश देता रहा और अंत तक, अर्थात यरूशलेम निवासियों के बंधुआई में जाने तक। वे मन फिराए और परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को सुधारे। यशया अध्याय 6:12-13। और यहोवा मनुष्यों को उसमें से दूर कर दे और देश के बहुत से स्थान निर्जन हो जाएं, चाहे उसके निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए तो भी वो नाश किया जाएगा। परंतु जैसे छोटे वो बड़े बांज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका ठूंठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका ठूंठ ठहरेगा। बांज वृक्ष या कोई भी पेड़ हो, यदि उसे काट दिया जाए तो भी वो जीवित रहता है। इसी प्रकार इसराइल मृतक प्रतीत होगा, परंतु समय आने पर वो पुनः पल्वित होगा। परंतु परमेश्वर कहता है, मैं उन्हें वापस लाऊंगा, चाहे उनका 10वां अंश रह जाए, परंतु मैं उन्हें वापस लाऊंगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वो इसराइल का पुनरुद्धार करेगा। यहूदियों का पुनरुद्धार परमेश्वर की प्रतिज्ञा है।